ये क्या दिन आता है इसका पता नहीं कि जिस भुजा से उन्होंने लाखों गौवें दान दी थी, आज उसी भुजा को लेकर राम जी वहां प्रतिज्ञा करते हैं कि या तो ये समुद्र मुझे लंका के लिए रास्ता देगा या फिर सागर का विनाश होगा। ये मैं प्रतिज्ञा पूर्वक बात कहता हूं। राम जी के इस प्रकार से कुशासन के ऊपर लेटे हुए 3 दिन बीत गए, परंतु किसी प्रकार से सागर ने कोई राम जी के इस कृत्य पर विचार नहीं किया। वह अपना रूप भी राम जी के सामने नहीं दिखाया। राम जी महाराज ने 3 दिन के बाद क्रोध भरते हुए क्रोध से लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण ये समुद्र का अभिमान है, हमारे द्वारा इसका आश्रय लेने पर ये हमें मुंह दिखाने भी नहीं आया। ठीक है, ये जो शांति है, क्षमा है, सरलता है, प्रियवादिता है, ये सब सत्पुरुषों के गुण हैं। सत्पुरुषों के सामने तो ये गुण है, लेकिन दुष्ट पुरुषों के सामने ये कमजोरी मानी जाती है। जो आदमी शांति की बात करता है, क्षमा की बात करता है, सरलता की बात करता है, उसको दुनिया कमजोर मानती है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को प्रकट करके चलता है, उसे सब लोग डरते रहते हैं। लक्ष्मण, यहां इस संसार में यदि विजय प्राप्त करनी है तो शांति से प्राप्त नहीं करोगे। तुम शांति से कोई चीज प्राप्त नहीं कर सकते, यहां तो तुमको क्रांति दिखानी होगी। लक्ष्मण, अब इसके जल को मैं एक बाण से रोक देता हूं। लक्ष्मण, यहां रहने वाले जितने मत्स्य हैं, मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, ये सब आज समाप्त हो जाएंगे। आज इस समुद्र को मैं सुखाऊंगा। क्षमा करके मैंने बहुत देख लिया। जिस क्षमा का लोग दुरुपयोग करते हैं, उस क्षमा को प्रकट नहीं करना चाहिए। क्षमा तो हमारे हृदय में रहे, लेकिन व्यवहार में योग्य पुरुष को ही वो क्षमा प्रदान करनी चाहिए। लाओ लक्ष्मण, मेरा धनुष लाओ, मेरे वो बाण लाओ, और आज मैं समुद्र को सुखाऊंगा। मेरे बानर समुद्र के अंदर से कूदते फांदते लंका में जाएंगे। समुद्र की जो मर्यादा है, उस मर्यादा को आज मैं बताऊंगा, इसको मर्यादा से रहित करूंगा। यहां अनेक महादानव रहते हैं, उन महादानवों का भी संहार होगा। भगवान श्री राम का क्रोध बढ़ गया। भगवान श्री राम ने उस समय अपने धनुष को लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस पर बाण रखे। भगवान ने बड़े वेग के साथ एक पर एक बाण छोड़ना चालू किया। उस बाण से वो समुद्र का जल यूं घेरा खाने लगा और उसमें बड़े बड़े मछले, बड़े बड़े तिमंगल, बड़े बड़े जो है मछलियां, ये सब आकुल व्याकुल होने लगी। सब की सब लंबी लंबी सांस लेने लगी। बड़े बड़े सर्प थे, वो व्यथित होने लगे। पाताल के अंदर रहने वाले दानव थे, वो हाय त्राही मचाने लगे। बड़े बड़े विंध्याचल, मंदराचल पर्वत जैसे विशाल अनेकों राक्षस वहां पर त्राही त्राही करने लगे। सब जीव जब बहुत ज्यादा दुखी हो गए, लक्ष्मण जी ने जाकर धनुष पकड़ लिया। महाराज, मामा, नहीं नहीं, रहने दीजिए, रहने दीजिए, इस प्रकार से आप इन प्राणियों को मत मारिए। इन प्राणियों को मरता हुआ देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। इसके बिना भी जो काम कर सकते हो वो कीजिए। महाराज, आप जैसे महापुरुष क्रोध के वश में नहीं होते, क्रोध का परिणाम भी अच्छा नहीं होता। आप देखिए आकाश में ऋषियों को देखिए, ब्रह्मर्षियों को देखिए, आकाश में जितनी देवी शक्तियां उनकी आप दृष्टिपात करके देखिए, उन सब का हृदय जल रहा है। इन प्राणियों के मरने से सब व्यथित हो रहे हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने समझाया। राम जी महाराज ने कहा कि लक्ष्मण, समुद्र को मैंने 3 दिन का समय दिया, समुद्र ने मेरे कष्ट को समझा नहीं। ए सागर, पाताल सहित तेरे पानी को मैं सोख लूंगा। सूखे हुए सागर की संसार में क्या महिमा रहेगी। मेरे द्वारा छोड़े हुए बाण व्यर्थ नहीं जाएंगे। आज तो तेरे अंदर पानी लहरा रहा है और मेरा जल शोषण करने वाला बाण तुम्हारे यहाँ मिट्टी मिट्टी उड़ा देगा। मेरे सैनिक पार हो जाएंगे और तुम अपने पौरुष को भूले बैठे हो, मैं अपना पौरुष जगाने वाला हूँ। इतना कहकर भगवान ने अपना ब्रह्मास्त्र लिया, ब्रह्मास्त्र को धनुष के ऊपर रखा और उसको कान तक खींचा। उस समय में सारे पर्वत कांप रहे थे, अंधकार छा गया, दिशाओं से शोभा समाप्त हो गई, तालाबों में नदियों में क्षोभ पैदा हो गया, आकाश में उड़ने वाले पक्षी स्तब्ध हो गए, सूर्य और चंद्रमा दूसरे नक्षत्रों के साथ मिलकर के तेजोहीन हो गए, सब जगह अंधकार ही अंधकार छा गया, आकाश से उल्कापात होने लगा, अंतरिक्ष से बड़ी करुण ध्वनियां आने लगी। इस प्रकार से धनुष के खींचने पर वायु की पंक्तियां चारों तरफ विभक्त विभक्त हो गईं, वृक्षों में संचलन पैदा हो गया, पर्वत और शिखर भाग ये सब टूट टूट करके गिरने लगे, दिशाओं में बड़े बड़े बद्दल आपस में टूट टूट करके बिखरने लगे। उस समय में जो प्राणी अदृश्य रहते थे वे प्राणी प्रकट होकर के करुणनाद करने लगे, जो प्राणी घुमा करते थे वो एक जगह भय के मारे छिप करके बैठ गए और व्यथित हुए वे प्राणी जरा से भी हिले नहीं डुले नहीं, एकदम स्थिर होकर के बैठ गए। समुद्र की लहरें शांत हो गई और उस समय समुद्र कांपने लगा, लेकिन भगवान के चित्त पर उस समय कोई प्रभाव नहीं पड़ा और भगवान के चेहरे पर वही क्रोध था। उसी समय में ये समुद्र से सागर स्वयं हाथ जोड़ते हुए जल में से प्रकट हुआ। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जिस प्रकार से उदयाचल पर्वत से अथवा सुमेरु पर्वत से सूर्य उदित होता है, उस प्रकार से ये समुद्र हाथ जोड़े हुए प्रकट हुआ। बड़े सुंदर गहने पहन रखा है, वैदुरी मणियां इसके जगमगा रहे हैं, लाल माला धारण किया हुआ रक्त नेत्र वाला ये समुद्र सिरसा धारवत सृजम अपने सिर से माला पहना हुआ है और बड़े सुंदर सोने के आभूषण पहन रखा है। बड़े बड़े आभूषणों से उसकी बड़ी शोभा हो रही है और उसने सफेद वस्त्र पहन रखे हैं, उसके छाती में मणि है और गंगा सिंधु आदि जो प्रधान प्रधान नदियां हैं उन नदियों से वो आविष्ट है और वो सागर वहां राम जी के सामने हाथ जोड़ा हुआ बोलता है, हे राम, पृथ्वी वायु आकाश जल और अग्नि ये पांच महाभूत है, ये स्वभाव से ही जड़ कहलाते हैं, इनका स्वभाव जड़ता से भरा हुआ है, इनमें ज्ञान नहीं होता, इसलिए न काम से न लोभ से न भय से और न किसी और उपाय से हम लोग बस में आ सकते हैं। हम लोगों ने जो अभी आपको मार्ग नहीं दिया वो काम लोभ भय आदि से हमने नहीं दिया, ऐसी बात नहीं, हमारे चित्त में ये बात पैदा ही नहीं होती। और महाराज ये समुद्र, ये जो मैं समुद्र हूं, ये अनेक जलचरों से युक्त हूं, आपके बाण के द्वारा सारे जलचरों के प्राण संकट में पड़ जाएंगे, आप जला करके जलराशि को समाप्त कर देंगे, उस समय में इन जल जंतुओं का क्या होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे जल जंतु जल के बिना मरने से पहले बंदरों को ही खा जाए। अतएव मैं आपको ऐसा उपाय बताना चाहता हूं जिस उपाय से आप आनंद पूर्वक अपनी सेना को लंका तक पहुंचा सकते हैं। राम जी ने कहा कि समुद्र इतने दिन बाद तुम प्रकट हुए हो। कहा महाराज, जड़ता का यही लक्षण है, हम जड़ हैं, हमको कोई सुध-बुध नहीं है। हमारे पर तो जब चोट पहुंचती है तब हमको सावधानी आती है। राम जी महाराज ने कहा, अच्छी बात है, अब मैंने ये बाण तो भाई संधा लिया है, ये बाण मेरा व्यर्थ में जाने नहीं दूंगा, कौन से देश में इस बाण को छोड़ा जाए। तब राम जी के वचनों को सुनकर के और उस समुद्र ने भगवान से बड़े आदर के साथ कहा कि हे राम, आप इस बाण को उत्तर दिशा की ओर फेंक दीजिए। वो द्रुमकुल्य नाम का एक स्थान है और वहां पर बहुत से चोर डाकू और लुटेरे लोग रहते हैं। वो द्रुमकुल्य भी एक मेरा ही स्वरूप है और वहां जो नगर है, वो जो स्थान है, वहां पर मेरा उत्तर सागर है। दुष्ट लोग उस उत्तर सागर का दुरुपयोग करते हैं, वे पापी जल पीकर के पाप को बढ़ाते हैं। मैं नहीं चाहता कि उन पापियों का उस जल से स्पर्श हो, अतएव आप अपने बाण को उत्तर की तरफ छोड़ दीजिए। सागर के वचनों को सुनकर के राम जी महाराज ने वो बाण उत्तर की ओर छोड़ दिया और सनसनाता हुआ वो बाण वो उत्तर सागर की तरफ चला गया और वहां जाकर के वो का जो सागर था उसको सुखा करके एक बहुत बड़ी मरुभूमि बना दी, मरु का अंतार बना दिया। वहां बालुका ही बालुका की मिट्टी हो गई और उस बाण के द्वारा वो वसुंधरा बहुत पीड़ित हुई। तब वहां पर एक व्रण हो गया उस जगह को, बहुत बड़ा कुआं हुआ, उस कुएं को ही व्रण के नाम से कहने लगे। और सततम चोत्यथम तोयम समुद्र से व दृश्यते, वहां के कुएं भी बहुत खारे खारे, खोत खारा खारा पानी उसका, वो समुद्र का ही अंश था। भगवान ने देखा कि मैंने बाण तो इस दक्षिण समुद्र के लिए लगाया था और इस दक्षिण समुद्र के कहने से, बाण पूर्ति के कारण से मैंने ये बाण उत्तर में लगाया। ये उत्तर सागर तो बेचारा कोई दोष नहीं किया था, मेरा तो दोष नहीं किया था। तब राम ने उस उत्तर सागर के सूखने पर वहां वरदान देते हुए कहा कि देखो, यह एक बड़ी पवित्र भूमि हो जाएगी, यहाँ की हवा में कोई रोग नहीं रहेगा, यहाँ खूब पशु रहेंगे, यहाँ फल फूल और रस की बड़ी जो है प्रभुत मात्रा में उपलब्धि रहेगी, यहाँ पर बहुत घी वगैरह रहेगा, बड़ा दूध वगैरह रहेगा, सुगंधित औषधियाँ यहाँ होगी, थोड़े जल में यहाँ अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ पैदा हो जाएंगी और ये मार्ग, ये स्थल बड़ा पुण्यवानों का स्थल रहेगा। राम जी के वरदान से वो क्षेत्र आज भी शिव पंथा, वो बहुत ही कल्याणकारी स्थान बन गया। इस प्रकार से जब उस समुद्र का उत्तरी कक्ष जब समाप्त हो गया, जल गया, तब उसने राम जी से कहा, हे राम, आपके पास में एक नल नाम का बानर है, ये विश्वकर्मा का पुत्र है और विश्वकर्मा का ज्ञान इसमें स्थापित हुआ है। आप मेरे पर एक बहुत बढ़िया पुल बनाइए और ये नल यहाँ पुल के लिए जिन पत्थरों को रखेगा, जिन जिन वस्तुओं को रखेगा, वे सब वस्तुएं मैं धारण करता रहूंगा अपने पानी के द्वारा, वो नीचे डूबेंगे नहीं, और यहाँ से लेकर आप लंका तक बहुत बड़ा पुल बना लीजिए। एवं मुक्त्वा उदधिर नष्ट है, ऐसा कहकर के समुद्र अदृश्य हो गया। और उसके बाद वो नल था वो राम से कहने लगा, हाँ महाराज, मैं यहाँ पुल बनाना जानता हूँ, मैं पुल बना दूंगा और लंका तक पुल बनाने में सब प्रकार से सहायता हो जाएगी बांदरों के वहां जाने के लिए। महाराज, जो व्यक्ति क्षमा से नहीं मानता है, शांति से नहीं मानता है, उसको दंड देना बहुत उचित मालूम देता है। कृतघ्न पुरुषों के लिए, दुष्ट पुरुषों के लिए दंड ही एक सबसे बड़ा उपाय है, वहां पर सांत्वना या दान कोई काम नहीं आता। देखो सागर कितना सीधा हो गया। इस सागर ने दंड के भय से आपको मार्ग देने की बात कही है। मैं अभी यहां पर पुल बना देता हूं। महाराज आप सामग्री के लिए बंदरों को आदेश दीजिए और मुझे सामग्री देते चले जाइए, मैं उस समय यह पुल बना दूंगा। राम ने कहा कि नल, इतने देर तो तुमने नहीं कहा कि मैं पुल बनाना जानता हूं। हां महाराज, मुझे विश्वकर्मा ने एक वरदान के साथ में साथ भी दिया है कि जब तक कोई तुम्हारे बल को याद नहीं दिलाएगा तब तक तुम्हारे अंदर कोई बात पैदा नहीं होगी। याद दिलाने के बाद तुम अपने ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। मम मातुर वरो दत्त है, मुझे मां ने भी यही वरदान दिया है। अतः मैं, मुझे दो वरदान मिला, एक तो मैं जिसका निर्माण करूंगा वो सफल निर्माण होगा, ये वरदान दिया, और जब तक कोई तुमको नहीं कहेगा तब तक तुम उस विद्या को भूले से रहोगे। अब मुझे कह दिया गया, अब मैं पुल बनाने में समर्थ हूं। आज ही पुल बनाने की सामग्री के लिए बंदरों को यहां से भेजा जाए। राम जी ने कहा, हे बांदरों, आप लोग जगह जगह से बड़े बड़े पर्वत लेके आओ, पर्वत खंड लेके आओ, वृक्षों को लेकर आओ, सूतली लेकर आओ, और सूतली न मिले तो वृक्षों की छाल उतार करके और उनको आपस में मिला मिला करके उनकी सूतली बनाओ, और यहां से लेकर लंका को अपने को पुल बनाना है, पुल की पुल बनाओ। तब बंदरों ने बड़े उत्साह के साथ, साल वृक्ष है, धव है, वंश है, कुटज है, अर्जुन है, ताल है, तिलक है, और तिनिश है, बिल्वक है, और सप्तपर्ण है, कर्णिकार है, आम है, अशोक है, ये सब लंबे लंबे जिनके तने हैं उनको लाला करके और उनके छालों को आपस में मिला मिला करके, बांध बांध करके, बड़े बड़े जो है हाथी जैसे जैसे पत्थर लाए गए, पर्वतों को उखाड़ उखाड़ के ला करके, और फिर जो है शिखरों को उखाड़ उखाड़ करके ला करके वहां पर जचाना चालू किया। समुद्र के अंदर एक क्षोभ सा हो गया। उस समय में वो समुद्र कैसा था, हो 10 योजन चौड़ा, माने 40 कोस चौड़ा और 400 कोस वो लंबा। नल ने वहां समुद्र के ऊपर पुल बनाना चालू किया। उस पुल के लिए सब प्रकार की सामग्री बंदरों के द्वारा लाई जा रही थी। वे बदलों के समान विशाल विशाल पर्वतों को लाकर वहां पर काष्ठों से बांध रहे थे, लकड़ियों से बांध रहे थे और वो पुल बना रहे थे। वे बंदर इतने उत्साह से काम करते थे, अभी छलांग मारी गए, दूसरी छलांग में वापिस आए, इस प्रकार से बहुत बड़ा भार ले ले करके वे आ रहे थे। पहले दिन, अब भाई जोड़ते चले जाना, पहले दिन उन्होंने 14 योजन मार्ग बनाया, दूसरे दिन उन बंदरों ने 20 योजन मार्ग बनाया, तीसरे दिन उन्होंने 21 योजन पुल बनाया, चौथे दिन उन्होंने 22 योजन पुल बनाया और पांचवें दिन उन्होंने 23 योजन पुल बनाया। इस प्रकार से 14 और 20 34, 34 और 21 55, 55 और 22 77, 77 और 23 100 योजन का मार्ग पूरा हो गया। जब वो सागर पूरा हो गया, सागर के ऊपर सेतु पूरा हो गया, तब नल ने कहा कि महाराज अब ये जो है सागर के ऊपर पुल बन चुका है। देवता लोग, गंधर्व लोग, सिद्ध लोग, ऋषि लोग वहां पर आकाश से इसको देखते हैं कि ओहो 40 और 400 कोस के आयताकार में ये पुल कितना सुंदर लग रहा है। देवता गंधर्व आपस में बात करते हैं कि वाह नल, तुमने बड़ा दुष्कर कार्य किया है, आज तुमने राम जी की सेना को लंका में पहुंचाने का बड़ा भारी पुण्य का काम किया है। उस समय में सब नल की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, सारे प्राणी देख देख करके बड़े हर्षित हो रहे थे, करोड़ों करोड़ों बानर अपने अपनी जगह से बड़े प्रसन्न हो गए थे, सब लोग यही कह रहे, सब बानर यही कह रहे थे, अधिकता सीता, सीता मिल गई है, सीता मिल गई है। मृतोयम रावण है, अब रावण मर गया है। और सीरितेयम लंका, अब ये लंका कष्ट पा रही है। ज्वलतीयम लंका, ये लंका जल रही है। ऐसे बहुत उत्साह में लोग डूबे हुए थे उस समय में। अपने हाथ में गदा लिए हुए विभीषण महाराज अपने साथ के मंत्रियों के साथ सुग्रीव के पास में थे। सुग्रीव ने कहा, राम जी से कहा, हे राम आप हनुमान जी के ऊपर बैठ जाइए, हे लक्ष्मण आप अंगद जी पर बैठ जाइए, मैं सारी सेना का ठीक ढंग से विभाग करके आगे कौन रहे, पीछे कौन रहे, दाएं बाएं कौन रहे और पीछे कौन रहे, इस प्रकार से सेना का ठीक ढंग से विभाग करता हूं। राम जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सुग्रीव के आदेश से सबको वहां आदेश आगे से आगे मिल गया और वो सेना एकदम ऐसी गरुड़ के आकार वाली हो गई। आगे से यूं थोड़ी पतली, फिर यूं चौड़ी और फिर करके फिर पूंछ के अनुसार यूं लंबी। इस प्रकार से वो सेना वहां से वहां बन गई और वो पुल के ऊपर जाने लगी। बंदरों की सेना, कोई तो पानी में कूद रहा है, कोई छलांग मार मार के जो आगे बढ़ रहा है, कोई पीछे जा रहा है, कोई आकाश में चल रहा है। अब उनको डर तो है नहीं, कितना ही ऊपर आकाश से चलो थक जाएंगे तो नीचे आ जाएंगे और थोड़ी देर बैठ जाएंगे, विश्राम करेंगे, कह नहीं हम तो समुद्र में तैरेंगे तो तैर लो, फिर ऊपर आओ फिर नीचे आओ। इनके लिए तो आज एक मनोरंजन का साधन हो गया। तदद्भुतम राघव कर्म दुष्करम समीक्ष देवा सह सिद्ध चारण ही उपेत्य रामम सहसा महर्षि भी तमभ्य सिंचन शिशुभुर जलई पृथक। भगवान का ये कर्म देख करके देवता है, सिद्ध है, ऋषि है, चारण है, ये बहुत प्रसन्न हो गए और वे अपने शुभ जल से ऊपर से ही राम जी के ऊपर जल डाल करके उनका अभिषेक करने लगे और बार बार बोलने लगे, आवाज करने लगे, हे राम तुम्हारी जय हो, हे राम सागर पर्यंत पृथ्वी पर आपका अखंड राज्य बना रहे। इस प्रकार से वे आशीर्वाद के वचन बोलते हैं। राम जी महाराज लक्ष्मण जी के साथ सबके साथ चल रहे हैं। चलते चलते राम जी ने कहा, देखो लक्ष्मण इस पुल के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन कभी तो थोड़ा अच्छे शकुन होता है, फिर कभी कुछ खराब शकुन होता है, फिर अच्छे शकुन होते हैं, तरह तरह के शकुन हो रहे हैं। ये देखो वायु कैसी कलुषित बहती है, पृथ्वी जैसे कांप रही है, पर्वत के अग्रभाग जैसे हिल रहे हैं, बदल की आकाश है, आकाश के बदल वो हमको अच्छे नहीं लग रहे हैं। और परुषा परुषस स्वनाह, बदलों की जो नाव आवाज है बहुत कठोर कठोर सुनाई देती है, बड़ा क्रूरा क्रूरम प्रवर्षन्ति, और क्रूर लोग बड़े गंदी गंदी चीजें बरसाते हैं, खून है मांस है इनकी बरसा कर रहे हैं। और संध्या है वो लाल चंदन के समान गहरी लाल होती है। संध्या देखो ज्यादा गहरी लाल होती हो इसका अर्थ है कि प्रकृति में खून का विस्तार हो जाएगा, मरेंगे आदमी प्राणी मरेंगे। और ये पशु पक्षी बड़ा क्रूर क्रंदन कर रहे हैं आकाश के अंदर। सूर्य को देखो, सूर्य कैसा निस्तेज सा मालूम देता है। रात्रि के अंदर चंद्रमा बड़ा संताप पैदा करता है और ऐसा लगता है कि आगे चलकर के बड़ा भारी कोई प्रलय होने वाला हो। सूर्य देखो छोटा मालूम देता है, सूर्य की तरफ देख देख करके उसकी पूजा करने का विचार होता है, रूखापन मालूम देता है। सूर्य को देखते ही दिल में प्रसन्नता होनी चाहिए, वो प्रसन्नता नहीं होती। सूर्य बहुत लाल दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण ये इतनी मिट्टी आकाश में उड़ती हुई दिखाई दे रही है जिससे तारे वगैरह भी नहीं दिखते, ये भी ऐसा बताते हैं कि बड़ा भारी कोई प्रलयांत युगांत के समान प्रलय होगा। कौवे बाज गीद ये सब के सब बार बार यूं पृथ्वी को देख देख करके और कंपित होते हैं। गीदड़ियों की आवाज सुनो कितनी भयानक है, और पर्वतों के द्वारा, शूलों के द्वारा, तलवारों के द्वारा और बानर और राक्षसों की इस लड़ाई से बड़ा भारी यहाँ पर मांस और खून का कीचड़ मचने वाला है, इस प्रकार के शकुन हो रहे हैं। लक्ष्मण थोड़े शुभ शकुन भी हो रहे हैं। ये देखो लक्ष्मण, मेरा दया नेत्र फड़कता है, मेरा दया हाथ फड़कता है, मेरा दया चरण फड़कता है। अंत में विजय अपनी होनी चाहिए। लक्ष्मण जल्दी करें, ये दिख रही लंका, चलो लंका में चलते हैं। इस प्रकार से बात करते करते बड़े प्रसन्न होते हुए राम जी महाराज लंका की ओर चलते जा रहे हैं। राम जी महाराज सेना को लिए लिए लंका के वहां पर पहुंचते हैं। उस समय में लंका के प्राणी बंदरों की आवाजों को सुनने लगे हैं। सुनते हैं कि ओ बंदरों की उछल कूद की आवाज कैसे आ रही है, जोर जोर से आवाज कैसे आ रही है। तब लंका के अंदर भी कई प्रकार की आवाजें की जाती हैं। इन आवाजों को सुनकर के बंदरों के मन में आया कि अच्छा हमारी आवाज को सुनकर ये आवाज बनाते, अपने भी आवाज करो। तो वो बंदर और ज्यादा किलकारी करते हैं। उन किलकारियों को सुनकर के रावण के मन में भय पैदा हुआ। रावण उस समय में अपने महल के ऊपर जाकर के और वहां जाकर वो बांदरी सेना को देखने के लिए गया। अत्रसा अमृत सावाक्षी, इधर भाई, इधर राम जी महाराज ने अपने मन में सोचा, राम जी ने सोचा कि ओहो ये लंका है, इस लंका में मुझे जाना है, वो सीता इस लंका में मिलेगी। जिस प्रकार से मंगल नक्षत्र के द्वारा रोहिणी को छिपाया जाता है, ऐसे रावण के द्वारा सीता को छिपाया गया है। लंबी सांस लेते हुए लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण, आकाश में जिस प्रकार से नक्षत्र को लिखा जाता है, उस प्रकार से सीता इस लंका में लाई गई है। लंका कितनी सुंदर है, आकाश को छूने वाली है, विश्वकर्मा ने अपने मन से इसको बनाया है। कितने विशाल विशाल यहाँ पर ये प्रासाद है, महल है। ओहो विष्णु पदम इवाकाशम छादितम पांडुभिर घनई, सफेद सफेद इन महलों के द्वारा बदल एकदम छा गए हैं। लंका के यहाँ जंगलों के वृक्षों के जो पुष्प है, उससे ऐसा लगता है कि मानो लंका पुष्पों से ढकी हुई है। यहाँ के मदोन्मत्त पक्षी किस प्रकार से दौड़ते दौड़ते एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हैं, तालाबों का जल पीकर कैसे मस्त होते हैं। देखो यहाँ के तालाबों में अभी भी हंसों की इनकी कितनी मधुर आवाज आ रही है, कैसी अच्छी अच्छी ठंडी हवा आ रही है। ऐसे राम जी महाराज बातें कर रहे हैं लक्ष्मण से और वे लंका के पास में से पहुंच गए हैं। अंगद जी महाराज उस समय में उनके साथ में है, नील भी उनके साथ में है, सारी सेना उनके पास में है। ऋषभ नाम का बानर और गंधहस्ती, ये सब गंधमादन, ये सब सेना के पार्श्व भाग में चल रहे हैं। जामवंत सुषेण वेगदर्शी ये पीछे के सेना के पीछे के हिस्से में है। इस प्रकार से सेना की बड़ी रक्षा हो रही है और ये सेना लंका की ओर बढ़ती चली जा रही है। ज्यों ज्यों ये लंका पास में आती है, त्यों त्यों बांदरों के सेनापति बड़ी बुद्धिमानी के साथ सेना को थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाते हैं और वे राक्षसों की कोई माया हमारे अंदर न आ जाए, इसके लिए बड़े सावधान भी होते हैं। इधर बंदरों ने अपने पास में कई वृक्ष और शिखर भाग ले रखे हैं। कब किस समय हमको लंका पर अकस्मात राक्षसों से भिड़ना पड़ जाए, इसलिए वे बड़े सावधान हैं। उनके सबके मन में इच्छा है कि लंका का मर्दन कर दिया जाए। सब बड़े उत्साह में डूबे हुए हैं। उधर राम जी ने सुग्रीव से कहा, वानरराज सुग्रीव, हमारी सेना का ठीक तरह से विभाग हो गया है। अब आपके कैद में जो शुक नाम का राक्षस आया हुआ है, पक्षी बना हुआ जो आया था, उसको छोड़ दो ताकि वो जाकर रावण को सूचना दे देवे। राम जी महाराज के कहने से शुक को छोड़ दिया गया और शुक दौड़ा दौड़ा वहां से लंका में घुस गया और लंका में घुस करके रावण के पास पहुंचा। बड़ा घबराया हुआ था, उसके अक्षर बड़े टूटते टूटते निकल रहे थे। महाराज लंका नरेश रावण की जय हो। रावण खूब जोर से हंसा, अरे वाशुक तुम्हारे तो कितने अच्छे पांख थे, कितना अच्छा लगता था, तू तो एक दिन में ही कैसे काला कलूटा और पक्षहीन सा हो गया, तेरे पांखों को किसी ने बांध दिया क्या, बड़ा घबराया हुआ बोलता है, अरे इन चंचल बंदरों के चंगुल में फंस गया होगा ना। हाँ बोलो क्या बात है, घबराते क्यों, ऐसी कौन सी घबराहट की बात है शोक, तुम रावण के पास खड़े होकर घबराते हो, रावण के पास भय नाम की कोई चीज नहीं है शोक, बोलो ऐसे घबराते क्यों हो। शुक ने कहा महाराज सागर के उत्तर तट से चल करके इन बंदरों ने एक बहुत बड़ा पुल बना लिया है, बंदरों ने पुल बना लिया है, नहीं नहीं पुल बनाकर वे लंका में प्रवेश कर चुके हैं, लंका में प्रवेश कर चुके हैं। हाँ महाराज, और मैं तो जब उनके पास वहां की